हमारी पद्मे होम, कैसे हैं आप सब लोग?
बहुत बढ़िया सर।
कल के सेशन के आगे की, डियर फ्रेंड्स, कल आपने सीखा था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि क्या है ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट? कल हमने सीखा सैड सिंड्रोम के बारे में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज, कारण हरी वरी करी। एक हमने ये बात किया, दूसरा समझा कि केवल हरी वरी करी नहीं, और भी कई कारण हैं। वो है कि हम MBBS में से ब्रेन और बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, माइंड और सोल के साइंस को नहीं समझ रहे हैं। यानी ब्रेन और बॉडी फिजिकल साइंस और मेटाफिजिकल साइंस माइंड और सोल की। अब ये चारों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कल हमने बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल के साथ सीखा। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो लिंक में जाकर पहले कल का सेशन आज के सेशन के बाद जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि आने वाला जो पूरा कंप्लीट कोर्स है ये आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी में ही मिलेगा। यानी ये ABC में आपको सिखा रहा हूं, आगे जब हम चक्र विज्ञान की बात करेंगे, जब तक आप ये आज का सेशन और कल का सेशन, ये दो सेशन को पूरे अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तब आपको ये चक्र विज्ञान समझ नहीं आएगा। फिर हमने बात किया था कि एक सुप्रीम पावर, गॉड, डिवाइन, वो एक लाइट है, और सोल वो भी एक एनर्जी है लाइट की फॉर्म में, जो गॉड के साथ कनेक्टेड है, और गॉड से, डिवाइन पावर से एनर्जी हमारी इस सोल में आती है, सोल से ब्रेन और बॉडी में आती है, लेकिन उसके बीच में आता है माइंड, और ये माइंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट ज्यादा आ रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको आज थोड़ा और रिवाइज करवाते हुए, कल के सेशन को रिवाइज करवाते हुए और इसके आगे लेके चलता हूं एडवांस वर्जन पर। आज हम सीखेंगे कि ये जो कल का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, और उनके बीच में ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, वो ट्रांसमिट हुआ। ये जो बायो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये बॉडी और ब्रेन के लेवल पर कैसे मैनिफेस्ट होता है, डिजीज कैसे आती है, ये हमने समझा। फिर आज हम समझेंगे एनर्जी बॉडी, ये करंट जाता किस में है, ये क्या होती है एनर्जी बॉडी, वैदिक साइंस के हिसाब से, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। तीन एस्पेक्ट्स पे हम इस एनर्जी बॉडी को समझेंगे, क्या है ये। फिर हम चक्रों के बारे में जानेंगे, और चक्रों के बारे में जानने के बाद साइकोनिरोबिक का कॉन्सेप्ट कैसे आपकी मदद करेगा इन चक्रों को एक्टिवेट करने में, आपके ऑरा को इल्यूमिनेट करने में, ये लाइट्स को ब्राइटन करने में। इस कॉन्सेप्ट पे आज हम पूरा एक घंटा आपके साथ जुड़ेंगे। मैं आपको एक पावर पॉइंट की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जुड़िए मेरे साथ इस PPT के साथ। यहां से शुरुआत करते हैं। कल आपने समझा ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है। हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एक स्पेयर पार्ट की तरह काम करते हैं, जैसे हार्ट एक टुल्लू पंप की तरह काम करता है। 24/7 शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। ये हमारे स्टमक एक जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर की तरह काम करता है। हमारा ब्रेन इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है कंप्यूटर की तरह, और ब्रेन के ऊपर है माइंड, सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर का। लेकिन इस पूरे मशीन को, इस ब्रेन के कंप्यूटर को और इस हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, जो मिलती है हमें सोल से। सोल क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। यानी हमें एक लाइट चाहिए। ये देखिए, ये लाइट ऑन हो गया। कब? ये एक डेड बॉडी है, जब ये लाइट यहां से निकल जाती है, सोल यहां से निकल जाती है, तो ये बॉडी डेड हो जाता है। इसके अंदर की सारी मशीनें ठीक होते हुए भी काम नहीं करती। लेकिन अगर इसी डेड बॉडी से हम ऑर्गन्स को किसी दूसरी लिविंग बॉडी में डाल दें, तो ये मशीनें काम करना शुरू कर देती हैं। यानी कि इस बॉडी के अंदर से एक एनर्जी जो कि सोल की फॉर्म में है, वो यहां से गायब हुआ, तो इस बॉडी को अगर हम कितना भी फिजिकल एनर्जी दे लें, यानी फूड, एयर, वाटर, कुछ भी दें, ये काम नहीं करेगी। यानी कि इस बॉडी के अंदर मशीन को चलाने के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक एनर्जी है, जिसे हम बोलते हैं सोल। सोल मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, लाइट की फॉर्म में है, दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे विजुअलाइज करते हैं कि कोई लाइट है जो हमारे अंदर में है। कहां पर रहती है अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहां पर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी होते हैं, सेंटर ऑफ ब्रेन, वहां पर सीट ऑफ सोल होता है, वहां पर आत्मा का स्थान होता है। स्पिरिचुअल साइंस में इसे आत्मा कहा जाता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम इसे एनर्जी कहेंगे। एक लाइट की फॉर्म में आपको इसे मानना है। अगर ये लाइट है और ये इस पूरी बॉडी को एनर्जी दे रही है, वोल्टेज दे रही है, ऊर्जा दे रही है, करंट दे रही है, तो फिर इसके पास लाइट कहां से आती है? इसके पास लाइट आती है गॉड से। कैसे? जैसे कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, जैसे अभी इस कमरे में प्रोजेक्टर चल रहा है, कैमरा चल रहा है, और ये लाइट कहां से आ रही है? स्विचेस से आ रही है, और स्विचेस में कहां से आ रही है? मीटर से होते हुए ये पावर स्टेशन से आ रही है। पावर स्टेशन पे भी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पावर स्टेशन को एनर्जी दे रहा है। सेम टू सेम हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, यही एनर्जी का सोर्स है। इस एटीपी को बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, दो, क्या क्या? एक फिजिकल एनर्जी। ये फिजिकल एनर्जी क्या है? फिजिकल एनर्जी है फूड, एयर, वाटर। लेकिन क्या केवल फूड, एयर, वाटर से फिजिकल एनर्जी बन जाएगा? नहीं, जब तक इसमें बायो इलेक्ट्रिकल करंट, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी तब तक इसमें नहीं बनेगा। यानी कि डेड बॉडी में अगर हम कितना भी फिजिकल एनर्जी दे दें, एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो सकते। लेकिन वही लीवर को या वही हार्ट को अगर हम दूसरी बॉडी में डाल दें तो उस लीवर के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल एनर्जी भी मिल रही है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिल रही है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से आती है? सोल से। लेकिन सोल के पास सुप्रीम पावर, कोई सोर्स है एनर्जी का, कहां है, कौन है, अभी तक किसी ने नहीं जाना, लेकिन ये कंफर्म है कि कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसको भी हम एक बड़ी लाइट की फॉर्म में ही विजुअलाइज करेंगे। वहां से सोल के पास, सोल से बॉडी के पास आने के लिए बीच में एक मीडियम है जिसे हम कहते हैं माइंड। और ये माइंड क्या है? तीन प्रकार का, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसके बारे में आपने कल समझा। माइंड से ब्रेन, और ब्रेन से फिर ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के थ्रू सेल्स में, और सेल से एटीपी फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो हमारे बॉडी की सेल्स में होता है। ये एनर्जी दो टाइम पे आती है, एक जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, यानी जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो ये जो हमारा माइंड है ये इनएक्टिव मोड में चले जाता है, और जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसमिशन सोल से बॉडी के बीच में होना शुरू हो जाता है। सोल और सुप्रीम पावर, ये दोनों एक एनर्जी के सोर्स हैं और ये 24/7 कनेक्ट रहते हैं। लेकिन जो सोल से एनर्जी बॉडी के अंदर में आ रही है बायो इलेक्ट्रिकल करंट, वो माइंड के लेवल पर डिस्ट्रॉय हो जाता है जब माइंड हाइपर एक्टिव होता है। और आज 21st सेंचुरी में माइंड हाइपर एक्टिव है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है। इसीलिए जो सोल की एनर्जी है, जो सुप्रीम डिवाइन की बायो इलेक्ट्रिकल करंट है, वो माइंड के लेवल पर ही 90% डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और बॉडी के लेवल पर, सेलुलर लेवल पर वोल्टेज कम हो रही है। यही कारण है डिजीजेस का। तो कैसे फिर इस वोल्टेज को बढ़ाया जाए, कैसे बैटरी को चार्ज किया जाए? दो तरीकों से होगा। एक है डीप स्लीप, यानी जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी बैटरी पूरी चार्ज होती है। ये देखिए, जब आप सो जाते हैं तब क्या हुआ, ये माइंड इनएक्टिव हो गया, और माइंड इनएक्टिव हुआ तो वहां से एनर्जी गॉड से एनर्जी सोल के पास है, सोल से बॉडी में ट्रांसफर होना है। माइंड सो गया है तो एनर्जी पूरी की पूरी कहां आ गई, बॉडी के लेवल पर ट्रांसफर होना शुरू हो गया। स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। स्लीप के दौरान, निद्रा योग जिसे कहा जाता है, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा तरीका जो हमने कल भी बात किया कि क्या हम जागते हुए इस एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। जब हम कुछ टेक्निक के द्वारा अपने माइंड को शांत कर लें, तो माइंड जैसे ही शांत होगा, सुप्रीम पावर इसके साथ जुड़े हुए हैं, सोल के साथ, सोल से एनर्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही माइंड स्लो हुआ, माइंड की एक्टिविटी कम हुई, इसे कहते हैं योग निद्रा, यानी हम योग के द्वारा एक निद्रा जैसी स्थिति पैदा कर लें, या यूं कहें मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप, यानी हम कॉन्शियसली एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जैसा हमें लगता है कि स्लीप हो गई है, बहुत गहरी निद्रा में चले गए हैं। लेकिन मेडिटेशन और नींद बिल्कुल डिफरेंट, दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दोनों ही बैटरी को चार्ज करते हैं। अब हमें यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट के साथ जुड़ना है। ये जो एनर्जी है स्लीप के दौरान, ऑलमोस्ट 80-90% लोग नींद अच्छी लेते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी चार्ज होती है। जिसका जितना अच्छा नींद होगा उतनी ही अच्छी बैटरी चार्ज होगी। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो यह बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होगा। लेकिन आप दूसरों से हटके कैसे दिख सकते हैं? भाई हमने टारगेट गोल्स बड़े बड़े बनाए हैं और दुनिया से कुछ ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, कैसे होगा वो? अगर आपकी बैटरी, आपकी एनर्जी उतनी ही है जो पूरी दुनिया की है, तो फिर आप ज्यादा मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? अगर आपको ज्यादा मैनिफेस्ट करना है तो आपकी बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज होनी चाहिए बाकी दुनिया से। उसको कैसे करना होगा? उसको करने के लिए आपको कुछ देर मेडिटेशन करना होगा, ताकि नींद के दौरान जो आपकी बैटरी चार्ज हुई वो 80-90% हुई, और आपने मेडिटेशन के द्वारा 20% 50% एक्स्ट्रा चार्ज अगर कर लिया तो आप 100 से अबाउट चले जाएंगे। जो लोग अपनी बैटरी 50% मेडिटेशन से चार्ज करते हैं, अब आप 150 के लेवल पर आ गए। आप बाकी पूरी दुनिया 80% दुनिया 90% बैटरी पे चल रही है, और अगर आपने मेडिटेशन के दौरान अपने आप को चार्ज किया तो आप 150 पे आ गए। अब आप जो चाहे इस एक्स्ट्रा एनर्जी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप उसे अपने कैरियर में लगाएं, चाहे आप अपने स्टडी में यूज करें, चाहे डे टू डे एक्टिविटी में यूज करें, चाहे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करें, चाहे नेटवर्किंग में यूज करें, मार्केटिंग में करें, बिजनेस में करें, च्वाइस आपकी है। ऐसा देखा गया है जितने भी लोग एक बड़ी सक्सेस को अचीव करते हैं, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिन्होंने सक्सेस की बुलंदियों को, सफलता के आयामों को अचीव किया, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी उन्हें इन्हीं दो सोर्स से मिलती है। वो लोग चैन की नींद सोते हैं और मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन अपने आप में एक मैजिक है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बैटरी 100 से एक्स्ट्रा चार्ज होगी। यहां से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि मेडिटेशन, आगे हम बात करेंगे कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है मेडिटेशन, और प्रॉपर मेथड क्या होता है वो सारी बातें आज हम जानेंगे। पहले हमें यह समझना है कि गहरी नींद निद्रा योग और योग निद्रा मेडिटेशन, दोनों का इंपॉर्टेंस है आपकी बैटरी को चार्ज करने में। तीसरी चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यह है गॉड, डिवाइन पावर, जिसे हम एनर्जी की फॉर्म में याद करते हैं। यह है हम और हमारी सोल, जो गॉड के साथ 24/7 कनेक्टेड है। बीच में माइंड आता है और ये बॉडी है। अब देखिए, हम भगवान से मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर प्रेयर करते हैं कि हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मुझे गाड़ियां दे दो, बड़ी बड़ी गाड़ी की डिमांड करते हैं, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे BMW चाहिए, कुछ लोग बंगला मांगते हैं सर, कुछ लोग अपनी कंपनी की ग्रोथ मांगते हैं। हम अलग अलग तरीके से भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, अलग अलग चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन गॉड के पास क्या है? क्या गॉड के पास यहां पर कोई स्टोरेज है जहां पर उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की हुई है? गैराज है उसके पास? कोई शोरूम उसने ओपन किया हुआ है? या उसके पास कोई बैंक है जिसके पास सारी करेंसीज हैं और वो जिसको जो करेंसी चाहिए वो दे देगा? नो, गॉड के पास क्या है? गॉड के पास केवल एनर्जी है, ओनली एनर्जी। यहां पर एनर्जी है, वो एनर्जी का सोर्स है। तो हमें उससे क्या मांगना चाहिए? एनर्जी। जबकि हम मांगते हैं उससे फिजिकल चीजें। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि मेटेरियलिस्टिक और एनर्जी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मैटर है एक एनर्जी है, और वो दोनों इंटरएक्सचेंज होते हैं। तो हमें गॉड से हमेशा एनर्जी की डिमांड करनी है। अब दूसरा बात आता है कि एनर्जी उससे कैसे मांगी जाए। क्या हमें प्रेयर करना चाहिए कि भगवान मुझे ज्यादा शक्ति दो, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी दो? तो भगवान कहते हैं कि एनर्जी तो मैं फ्री फ्लो दे रहा हूं, मैंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगाया है, क्योंकि गॉड का इस सोल के साथ 24/7 कनेक्शन बना हुआ है और वहां से एनर्जी फ्री फ्लो में आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब एनर्जी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहां पर हो रहा है? वो सब किसी को 100% एनर्जी हर सोल को देता है, लेकिन सोल से बॉडी के अंदर एनर्जी मैनिफेस्ट कैसे होता है? माइंड के थ्रू। जिसका माइंड जितना शांत है, जितना कूल है, जितना काम है, उतना ही एनर्जी एक्स्ट्रा बॉडी में ट्रांसमिट होगी। सोल के पास, हर किसी सोल के पास गॉड से 100% एनर्जी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आ रही है। तो हमें एनर्जी भी मांगना नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें सबको एनर्जी इक्वल दे रहा हूं। हाँ, ये टैप करते आना चाहिए, ये जो एनर्जी फ्री फ्लो में गॉड से आ रही है, इसको अपने बॉडी के लेवल पर, सेलुलर के लेवल पर, ऑर्गन्स के लेवल पर 100% पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या दो मेथड है? एक है डीप स्लीप, कि आप गहरी नींद लें और 6 घंटे अपने माइंड को एकदम इनएक्टिव मोड में डालकर सो जाएं, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसमिशन प्रॉपर वे में हो। और दूसरा, कि जो मेडिटेशन का तरीका मैंने आपको दिया है, गॉड बोलते हैं कि हमने मेडिटेशन आपको सिखाया, ध्यान वैदिक साइंस से चलते आ रहा है, हर वेद में, हर विज्ञान में मेडिटेशन के बारे में जिक्र होता है, उसके द्वारा आप मेरे साथ कनेक्ट हो और इस माइंड को शांत रखें, ताकि जो एनर्जी का फ्लो माइंड के लेवल पर खत्म हो रहा है, ये बॉडी के लेवल पर एक्स्ट्रा कर सके। अब आपने नींद के द्वारा एनर्जी लिया और मेडिटेशन के द्वारा एक्स्ट्रा एनर्जी लिया, अब आपके पास ये जो 150% एनर्जी आ गया, चॉइस आपकी है। इससे आप गाड़ियां बनाएं, बंगले बनाएं, कंपनी की ग्रोथ करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ करें, या स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। यानी गॉड से मांगना नहीं है, वो तो सबको दे रहा है, टैप करना है। एक होता है प्रेयर और एक होता है मेडिटेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रेयर में हम एक तरफा बात करते हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं उसे सुनाते हैं गॉड को, कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मेरे दुख हर लो, गॉड मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मेडिटेशन में हम उसकी बात सुनते हैं। इन प्रेयर हम गॉड के साथ कन्वर्सेशन अपनी तरीके से करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में गॉड हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है, हमें सुनना चाहिए उसे। टू वे कम्युनिकेशन है मेडिटेशन। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको मेडिटेशन में गॉड से मिलेगा। प्रेयर आप केवल अपनी एप्लीकेशन लगा के आ रहे हैं वहां, मेडिटेशन में वो आपको मैसेज भी देता है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं और जो भी आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, गॉड के साथ जुड़ के साइकोनिरोबिक की साइंस के द्वारा अपने बॉडी के सेलुलर लेवल पर वोल्टेज को बढ़ाकर और गॉड से मैसेज को डाउनलोड करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये साइकोनिरोबिक की साइंस आपको इस बात को समझाती है। देखते हैं आगे। ये है हमारी बॉडी का ब्रेन, और ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस सेंटर होता है, यहां और यहां, यहीं पे कहा जाता है कहीं सोल रहती है, जो इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। मेडिकल साइंस में ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कहा गया है, ये कंट्रोलिंग सेंटर है सिस्टम का। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिस्टम का पार्ट है, एंडोक्राइन का, और ये दोनों मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूरा कंट्रोल बॉडी का गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वैदिक साइंस में बताया गया यहीं पर कहीं सोल रहती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जो सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम, उसका एक रिप्लिका एनर्जी बॉडी है जो दिखाई नहीं देती। ये दोनों चीजें आपस में चल रही हैं एक साथ। मेडिकल साइंस ने बॉडी के विज्ञान को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, मशीनें बना ली, लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं, सोल, एनर्जी बॉडी, इसको नहीं देख पा रहे हैं। एक हमारा ये फिजिकल बॉडी है, कल हमने बात किया, इसी के बिल्कुल पैरेलल में एनर्जी बॉडी होता है। जैसे इस बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, कहां पर? आर्टरीज और वेन में। आर्टरीज और वेन यानी कि खून की धमनियां, उनका जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में। ऐसे ही हमारे इस शरीर के पैरेलल में एक बॉडी और है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी बॉडी। और इस एनर्जी बॉडी में क्या फ्लो करता है? बायो इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें नाड़ियां होती हैं। इस साइंस का नॉलेज हमारे वैदिक साइंस में पूरा जिक्र किया गया है, इसका वैदिक विज्ञान में 72,000 नाड़ियां, 114 चक्रास, उसमें से 7 मेजर चक्र, यह है कंट्रोलिंग सिस्टम। जैसे फिजिकल बॉडी में डिजीज आती है, ब्लॉकेज होता है आर्टरीज का, वेन का, ऐसे ही हमारे एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेज आ जाता है और उसकी वजह से एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। और उसके बाद पहले एनर्जी का फ्लो रुकता है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी में जो फिजिकल ऑर्गन है वहां वहां पर डिजीज आती है। बताता हूं और अच्छे से ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये है फिजिकल बॉडी। इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्वस टिश्यू है और ये नर्व्स के गुच्छे होते हैं जिसे हम बोलते हैं नर्वस प्लेक्सिस, न्यूरॉन्स के प्लेक्सिस। एज ए डॉक्टर मैंने इन्हें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बॉडी के डिसेक्शंस के दौरान सबको हम एक्सप्लोर करते थे वन बाय वन। और ये नर्व्स प्लेक्सिस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं जैसे कॉक्सिजल प्लेक्सिस, सेक्रल प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस, कार्डियक प्लेक्सिस, मेडिकल साइंस ने इन्हें नाम दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वैदिक साइंस में यहीं पर जहां जहां ये न्यूरॉन्स हैं, गुच्छे हैं, प्लेक्सिस हैं, वहीं वहीं पर चक्रों का लोकेशन बताया गया। क्या ये बातें कोइंसिडेंटल हैं या हमारी मेडिकल साइंस उस साइंस को समझ ही नहीं रहा है? यह बहुत बड़ी समझने की बात है, देखने की बात है। ये देखिए, एक तरफ हमारे नर्वस सिस्टम और दूसरे हमारे ग्लैंड्स। ये है बॉडी का सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड्स, और ये है थाइमस हार्ट के पास, ये है पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। ये किडनी के ऊपर दो होते हैं, यहां पर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और ये है ओवरीज एंड टेस्टिस, और नीचे ओवरीज और टेस्टिस ये हो गए। एक एक ग्लैंड वहीं पर होता है जहां जहां पर चक्रों की लोकेशन बताई गई है। यह बात बहुत समझने लायक चीज है कि मेडिकल विज्ञान तो बाद में बना, वैदिक साइंस में चक्रों का उल्लेख पहले आता है। यानी कि हमारे वेदों के समय, पुराने समय में जो पूर्वज थे हमारे, उनको इन चीजों की सारी नॉलेज थी। उनका विज्ञान हमारे विज्ञान से कहीं ज्यादा विकसित था। आज हमें लगता है कि हमारी साइंस उनसे ज्यादा विकसित है। नो, किसी भी फील्ड में देख लें, साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस या किसी भी साइंस की, ब्रह्मांड की साइंस, एस्ट्रोलॉजी की साइंस, वो लोग सारी चीजें अदृश्य फॉर्म में यूज करते थे माइंड के द्वारा। उनके माइंड की पावर बहुत स्ट्रांग थी और वो सेंस करते थे इस एनर्जी को। आज हमने माइंड की पावर को कम कर दिया है, ब्रेन की पावर को ज्यादा यूज कर रहे हैं और सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में आ गई हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जूम की मीटिंग्स जो आज हम अपने आपस में बैठे बैठे कर रहे हैं, यहां पहले भी जूम मीटिंग होता था। आपको क्या लगता है कि पहले जूम नहीं होता होगा? आंखें बंद करते थे, पासवर्ड डालते थे, कनेक्ट हो जाते थे, जब चाहे जिससे बात करके आ गए। इनफैक्ट वो लोग तो वर्चुअली चले भी जाते थे एक दूसरे के पास, विचरण करके आ जाते थे स्पेसेस का। ये सारी बातें आपने देखी होंगे सीरियल्स में, महाभारत के समय या रामायण के समय। लेकिन थोड़ा सा डीप जाके सोचिए, क्या ये साइंस नहीं थी? आज हम ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चलाने की बात करते हैं, प्लेन को चलाने की बात करते हैं, उस समय तो वैसे ही होता था, ऐसे आदेश दिया और चलता था इस कॉन्शियसनेस से। सेम टू सेम कोई भी विज्ञान की बात करें, अगर हम अस्त्र शस्त्र की बात करें, ब्रह्मास्त्र होता था, कुछ मंत्र पढ़ते थे और वो अस्त्र या शस्त्र हाथ में आ जाता था, उसके बाद उस शस्त्र को चलाया जाता था। क्या आज वैसा नहीं है? आज भी तो हमारे पास मिसाइल्स हैं और पासवर्ड हैं। एक पासवर्ड लीक हुआ तो मिसाइल को कोई भी ऑपरेट कर सकता है। उनकी साइंस हमारी साइंस से ज्यादा डेवलप थी। अगर हम उस साइंस को आज एक्सप्लोर करें और मॉडर्न सिस्टम के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ उसे जोड़ें तो शायद आज हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हो क्या रहा है कि हम अपनी साइंस को बड़ी साइंस मान रहे हैं और पुरानी सारी साइंसेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज जरूरत है इंटीग्रेशन की। जो हम लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, साइंटिफिक जिसे हम बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी जिसकी हम बात करते थे, स्पिरिट की साइंस की, वो भी अपने आप में एक साइंस है, फिलॉसफी नहीं है। साइंस और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है? फिलॉसफी मतलब कुछ लिखा हुआ उसका प्रूफ नहीं है, साइंस मतलब उसको हमने प्रूव कर दिया हाइपोथेसिस बनाकर। लेकिन शुरू में कोई भी साइंस एक फिलॉसफी की फॉर्म में ही होता है, फिर उसका प्रूफ मिलता है। आज हमें अगर स्पिरिचुअल साइंस का प्रूफ नहीं मिल रहा है, अगर हम बोले कि स्पिरिट नहीं है, सोल नहीं है, लेकिन प्रूफ तो है ना कि हम कितना भी कोशिश कर ले, सोल अगर चली जाए फिर हम इस बॉडी को, डेड बॉडी को वापस जिंदा नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देता कहां जाता है। ये चक्र भी ऐसे ही हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन बॉडी के अंदर होते हैं, और आज तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिसके द्वारा हम इन्हें देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। पूरी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें से तीन मेजर नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला, जो ईड़ा नाड़ी है वो मून नाड़ी है, कूल डाउन, रिलैक्स। पिंगला नाड़ी सिंपैथेटिक सिस्टम है, सन नाड़ी है, फाइट एंड फ्लाइट। हमारे शरीर में दो सिस्टम मैंने बात किया था, पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। पैरासिंपैथेटिक कूल डाउन के लिए है, रिलैक्स होने के लिए है, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट के लिए, इमरजेंसी मोड है। यह हम डॉक्टर्स ने समझा, मेडिकल साइंस ने समझा, लेकिन इस विज्ञान में बताया गया ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो कि पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम का काउंटर पार्ट है। और एक बीच में नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, ये जब एक्टिव होती है इसमें से लाइफ फोर्स एनर्जी आती है तो हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर रेज होना शुरू हो जाती है। और जहां जहां पर ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहीं वहीं पर ये चक्र होते हैं, वहीं वहीं पर चक्र होते हैं। ये देखिए, पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और बीच ये सुषुम्ना नाड़ी, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये देखिए, ये चक्र होते हैं, सबसे ऊपर क्राउन चक्र होता है और सबसे नीचे रूट चक्र होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट पॉइंट पे रूट चक्र और सबसे ऊपर ब्रह्म क्राउन चक्र, सहस्राज चक्र। इसके बाद आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस के नीचे सैक्रल प्लेक्सिस और सबसे नीचे रूट चक्र। ये जो क्राउन चक्र है ये भी सिंगल एंट्री होती है और रूट चक्र इसका भी सिंगल एंट्री पॉइंट होता है। बाकी जितने भी चक्र हैं उनके फ्रंट और बैक दोनों होते हैं। ऐसे पूरे शरीर में 114 चक्र होते हैं, माइनर चक्र होते हैं, मेजर चक्र होते हैं। ये 7 मेजर चक्र होते हैं, बाकी माइनर चक्र हैं। अगर हम डिटेल समझना चाहें तो एनर्जी बॉडी को हम डिटेल में भी समझ सकते हैं। हाथ और पैरों में भी चक्र होते हैं। चक्र मतलब क्या? जो मेरिडियंस हैं, जो नाड़ियां हैं, जो एनर्जी चैनल्स हैं, उनके अंदर एनर्जी कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, एनर्जी वॉर्टेक्स हैं। ये ऐसे रोटेट होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है इनकी। जब ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आउटर इन्वायरमेंट में से पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेकर जाते हैं शरीर के अंदर, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को बाहर एक्सपेल करते हैं, जस्ट लाइक एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन की तरह ये घूमते रहते हैं। अगर इनकी स्पीड कम हो जाए, वोल्टेज कम हो जाए, तो इनका मूवमेंट कम हो जाएगा और ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज जो बॉडी में हो रहा था ये ब्लॉक हो जाएगा। और ये जो चक्र हैं ये कनेक्टेड होते हैं नाड़ियों के साथ, 72,000 नाड़ियों के साथ। अगर नाड़ियां या चक्र ब्लॉक हो जाएं तो हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो, वोल्टेज प्रॉपर नहीं होगा। जिस ऑर्गन से रिलेटेड नाड़ी क्लोज हो गई, चैनल्स ब्लॉक हो गई, उसी ऑर्गन से रिलेटेड ऊर्जा बंद हो जाएगी और फिर बाद में कुछ महीनों के बाद उसी पार्ट में, उसी शरीर के उस ऑर्गन में, उस सेल्स में डिजीज आएंगे। पहले एनर्जी चेंजेस आते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर बायोकेमिकल, फिर पैथोलॉजिकल, ये सीक्वेंस होती है। इसीलिए भी इन चक्र विज्ञान को एक साइंटिफिक वे में समझना बहुत जरूरी है। तो हमने समझा इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है गॉड से सोल के पास, सोल से माइंड के पास, माइंड से ब्रेन के पास, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और फिर बॉडी पार्ट्स में, और इस तरीके से हमारी बॉडी में ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है। फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में ट्रांसमिट होती है। तो हमने क्या समझा, रूट कॉज ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की कमी क्या है, वो है एनर्जी का ब्लॉकेज इन नाड़ियों के लेवल पर, धमनियों के लेवल पर और ऑर्गन्स के लेवल पर, सेलुलर के लेवल पर वोल्टेज का कम होना। कैसे होता है ये वोल्टेज कम, मैं आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाना चाहूंगा। जुड़ते हैं इस वीडियो के साथ।
ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है, ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं।
यस, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, इसमें लाइफ फोर्स एनर्जी बायो इलेक्ट्रिकल करंट मूव करता है, जो दो तरीके से चार्ज होता है, एक डीप स्लीप के दौरान और एक मेडिटेशन के दौरान। ब्लॉकेज कैसे आता है? हरी वरी और करी। हरी मतलब फिजिकल बॉडी पे एग्जर्शन, वरी मतलब माइंड के द्वारा। जब आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आपकी इमोशंस डिस्टर्ब अगर होंगी तो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई मेरिडियंस बंद हो जाएगी, एनर्जी चैनल्स बंद हो जाएगा। जो एनर्जी चैनल्स बंद हुआ उसी से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होगा फिजिकल बॉडी में वहां पर डिजीज आएंगी। एनर्जी मेडिसिन बताता है कि हर डिजीज के पीछे कोई ना कोई इमोशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत लंबे समय तक ऐसी इमोशन फील करते हैं कि मैं सारे घर का भार अपने कंधों पर संभाल रहा हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले लेते हैं हर चीज की अपने, और कुछ जब नहीं हो पाता ब्लेम भी अपने आप को ही देते हैं, तो धीरे धीरे ये ब्लॉकेज यहां पर होते हैं, जो मेरिडियंस यहां की हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं और उन लोगों को फ्यूचर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या शोल्डर ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जो ओवर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवर अकाउंटेबल होते हैं। जो लोग लगातार फियर महसूस करते हैं, किसी चीज से डरे हुए हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, उन्हें दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है, या तो किडनी से रिलेटेड या ज्वाइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड। फियर लगातार किडनी की मेरिडियंस को ब्लॉक कर देता है और फियर की वजह से किडनी फेलियर्स की प्रॉब्लम आती है। इमोशनल एनालिसिस ऑफ डिजीज मैं बता रहा हूं। जो लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, बहुत ज्यादा अपने पास संजो के रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं, बहुत ज्यादा अपने साथ जुड़े हुए होते हैं, दूसरों की बिल्कुल चिंता नहीं करते, उनका जो पेनक्रियाज वहां की मेरिडियन सोलर प्लेक्सिस रिलेटेड मेरिडियन ब्लॉक हो जाती है और उनको डायबिटीज होता है। जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनका यह थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड चक्र ब्लॉक हो जाता है। जो लोग फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जिंदगी में खुलापन चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, जकड़न महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको नी ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम होती है, हिप ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों के साथ इमोशनल एनालिसिस साइकोसोमेटिक डिजीज में देखा गया, यानी कि जो साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं, जो कहीं ना कहीं इमोशन की वजह से बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइकोसोमेटिक। मेडिकल साइंस उन्हें साइकोसोमेटिक डिजीज कहता है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन बताता है कि वो इमोशन, पर्टिकुलर इमोशन माइंड के थ्रू हमारे पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन्स की मेरिडियंस और एनर्जी चैनल्स को बंद कर रही है, नाड़ियों को बंद कर रही है। वैदिक विज्ञान में इन्हें नाड़िया कहा गया, चाइनीज मेडिसिन में इन्हें मेरिडियंस कहा गया, और कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुई जहां पर इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा नाड़ियों को देखा गया, प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि नाड़ियां होती हैं, मेरिडियंस होती हैं। आप गूगल पे जाके प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर डालिएगा, बहुत सारी रिसर्च आपको मिलेंगी, बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे, उनके इमेजेस मिलेंगे नाड़ियों के। दूसरी चीज ये प्रूफ हुई कि जो हमारी माइंड की इमोशंस हैं, डिस्टर्ब इमोशंस हैं, वो पर्टिकुलर नाड़ी को ब्लॉक कर देती हैं, और पर्टिकुलर नाड़ी के ब्लॉक होने से पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर सेल में वोल्टेज कम हो जाता है, और उसकी वजह से पर्टिकुलर टाइप की डिजीज आती है। इस कोर्स में मैं आपको इमोशनल एनालिसिस ऑफ डिजीज का एक पीडीएफ शेयर करूंगा, कौन सी इमोशन कौन सी डिजीज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी कौन सी इमोशन कौन सी डिजीज पैदा कर रही है, पहले आप यह ढूंढें कि आपके शरीर में कौन सी डिजीज है, और उस डिजीज के पीछे की इमोशन इस पीडीएफ के माध्यम से ढूंढ कर ये देखें कहीं आपने ऐसा तो नहीं कि ये वाली इमोशन बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब की हुई है। और अगर आपको मैच हो जाता है तो इट मींस कि एनर्जी साइकोलॉजी, एनर्जी मेडिसिन आपकी डिजीज का रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको उस इमोशन को ठीक करना होगा, नहीं तो वो डिजीज आपकी परमानेंट क्योर नहीं होगी। ये है पहला स्टेप हीलिंग और क्योर का, इमोशनल वेलनेस। जब तक आप उस पर्टिकुलर इमोशन को ठीक नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर नाड़ी खुलेगी नहीं, ब्लॉकेज रहेगी। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, वो रेड कलर के धब्बे बन जाते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर मेरिडियन में एनर्जी फ्लो ही नहीं होता। क्यों वो ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहां पर इमोशनली ब्लॉक कर दिया। एक फिजिकली ब्लॉकेज होता है आर्टरी और वेन में, जिसे हम एंजियोप्लास्टी के द्वारा ठीक करते हैं, एंजियोग्राफी के द्वारा देखा जाता है और एंजियोप्लास्टी के द्वारा ठीक किया जाता है। और एक एनर्जी बॉडी के अंदर, ये जो एनर्जी एनालिसिस है, आजकल कुछ डिवाइसेस आ गई हैं, जैसे जीडीवी बायोवेल, बायोफील्ड व्यूअर, जिसमें आप नाड़ियों का अध्ययन करके ये देख सकते हो कहां की एनर्जी ब्लॉकेज है। फिर उसका इमोशनल एनालिसिस मैं निकालता हूं, मैं पूछता हूं क्लाइंट से कि आपकी ये इमोशन डिस्टर्ब तो नहीं है, और आश्चर्य की बात है ये दोनों मैच कर जाते हैं। और मैच करने के बाद मेरा स्टेप होता है अगला, कि उससे वो इमोशंस को ठीक करवाना। पहले इमोशनल वेलनेस लाना होगा। दूसरा पार्ट है कि वो इमोशंस के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन अपने आप में एक ऐसी चीज है, जब आप इस लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने सहस्रार चक्र से टैप करके एक एक मेरिडियन में भेज सकते हैं, कॉन्शियसनेस के द्वारा आपको उस पर्टिकुलर मेरिडियन को फोकस करना है, वहां पे एनर्जी के फ्लो को चैनलाइज करना है और उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करना है। ये सारा काम आप अपने माइंड और कॉन्शियसनेस से करेंगे। पैदा भी आपने किया, ओपन भी आप कर सकते हैं। ब्लॉकेज आपने पैदा किए, अब ये ब्लॉकेज को ओपन कर भी आप खुद सकते हैं। साइंस मैं आपको सिखा रहा हूं, साइकोनिरोबिक की साइंस। ये राजयोग का एडवांस मेथड है, जिसके द्वारा आप अपनी कॉन्शियसनेस को मेरिडियंस पर लेकर जा सकते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी एक अपने आप में साइंस थी। वैदिक साइंस सबसे बड़ी साइंस है, उसके अंदर सारी साइंसेस है। प्रॉब्लम कहां है कि हमें वेदों को पढ़ना नहीं आता, हमें कोई समझा नहीं रहा है। अगर हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो भी हमें वेदों को पढ़ना होगा, अगर हम मेडिकल बॉडी को समझना चाहते हैं तो हमें वेदों को पढ़ना होगा। स्पिरिचुअल एंगल पर ये नाड़ियों का विज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन नाड़ियों का विज्ञान आता है, चाइना में, जापान में बहुत सारे लोग जानते हैं नाड़ियों को, वहां पे मेरिडियंस कहा जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के द्वारा इन्हें ओपन किया जाता है। मेडिसिनल पार्ट एक अलग पार्ट है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर अलग पार्ट है। मैं आज आपको जो साइंस सिखा रहा हूं उसके द्वारा आप मेडिटेशन के दौरान अपने इन एनर्जी चैनल्स को, ब्लॉकेज को हटा सकते हो विदाउट एनी मेडिसिन। एक वीडियो के साथ आपको और जोड़ता हूं, देखते हैं क्या है इस वीडियो में, कैसे हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है बॉडी के अंदर। Thank you. देखा आपने इस वीडियो के द्वारा कैसे हमारी बैटरी दिन भर काम करने के बाद रात को डिस्चार्ज हो जाती है शाम को ऑफिस के बाद, और फिर कुछ लोगों की बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो जाती है और शाम को जब हम मेट्रो से या अपने व्हीकल से घर जाते हैं फिर दूसरों के साथ पीएनपीसी पर निंदा पर चर्चा, दूसरों की बुलाई बुराई उसके बारे में बातें वो करके अपनी जो बची खुची बैटरी होती है वो भी डिस्चार्ज कर देते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो टोटली डिस्चार्ज होते हैं और बैटरी लो चल रही होती है, फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर घर के सदस्यों के ऊपर गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति जिसने आपने देखा वो घर से ऑफिस से जैसे ही अपने मेट्रो में गया वहां पर उसने बैठ के मेडिटेशन चालू किया, अपना एंटीना ऑन किया और एंटीना को गॉड के साथ कनेक्ट किया और अपनी बैटरी चार्ज कर लिया। जितनी बैटरी उसने ऑफिस में डिस्चार्ज की थी उससे ज्यादा चार्ज करके गया, इनफैक्ट रास्ते में जो भी उसे मिला उसको भी उसने चार्ज कर दिया और घर जाने के बाद वो फुली चार्ज है और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फुल एनर्जी के साथ मिल रहा है। ऐसा हम सबके साथ भी तो होता है। अभी तक आपने सीखा कि सोल सुप्रीम पावर से कनेक्ट है और एनर्जी बॉडी के लेवल पर ट्रांसफर करने के लिए माइंड का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए पूरी एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी बॉडी, 72,000 नाड़ियां और 7 मेजर चक्रास। ये पूरा एनर्जी सिस्टम है जहां ट्रांसफर होता है। डिस्टर्ब इमोशन या ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग हमारी मेरिडियंस को एनर्जी चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए बॉडी के लेवल पर सेलुलर के लेवल पर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है और डिजीज पैदा होती है। सेम टू सेम जो ऑरा है उसके अंदर अब ऑरा में चेंजेस आएंगे, वोल्टेज कम होगी, 7 कलर्स नहीं होंगे, ये लाइट डिम हो जाएंगी तो हमारा ऑरा कम हो जाएगा और हमारे आउटर इन्वायरमेंट में जो प्रोस्पेरिटी है वो भी कम हो जाएगी, हैप्पीनेस है वो कम हो जाएगा, हमारा सोशल नेटवर्किंग कम हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो एक हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर डिजीज आएंगी और आउटर इन्वायरमेंट में हमारे साथ नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी जब जब हमारी एनर्जी ब्लॉक होगी। और ये क्यों होता है? पूरा खेल माइंड का है, लेकिन माइंड और फिजिकल बॉडी के बीच में जो ये एनर्जी बॉडी है इसका बहुत बड़ा रोल है। अब हम साइकोनिरोबिक साइंस के द्वारा इस एनर्जी बॉडी को 1 by 1 ठीक करना सीखेंगे, राइट? तो ये साइकोनिरोबिक की साइंस है क्या, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि माइंड से एनर्जी ब्लॉक होती है तो एनर्जी ओपन करने का तरीका भी माइंड ही होगा, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन मतलब कुछ लोग समझते हैं मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को जीरो कर देना, थॉटलेसनेस। नो, मेडिटेशन का मतलब थॉटलेसनेस नहीं होता, क्योंकि कभी भी हम थॉटलेसनेस हो ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे माइंड में कोई भी थॉट ना आए। इनफैक्ट जब हम सो रहे होते हैं तब भी कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। मेडिटेशन का मतलब है ये जो थॉट्स चल रहे हैं इनको कम करके इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, यानी कि रैंडम थॉट्स जो चल रहे थे अभी इधर किस पर्टिकुलर चीज का थॉट आया, फिर किसी दूसरी चीज का थॉट आना शुरू हो गया। अभी आप इंडिया में बैठे हैं फिर बैठे बैठे आप अमेरिका चले गए, अभी आप कोरोना के बारे में सोच रहे थे फिर बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि माइंड रैंडम चलेगा, रेस्टलेसनेस, और थॉट्स रैंडमली आते रहेंगे। मेडिटेशन में क्या किया जाता है कि एक इन थॉट्स को हम कम करते हैं, दूसरा इन्हें एक गाइडेड जर्नी पर लेके चलते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके अंदर किस प्रकार की थॉट्स को कैसे जर्नी पे लेके चलना है। मान लीजिए आप हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, तब आपको अपनी इन थॉट्स को अपने इनर बॉडी के अंदर जर्नी पर लेकर चलना होगा, हीलिंग जर्नी पर। यानी कि जहां जहां पर इमोशनल ब्लॉकेज हैं उन्हें ठीक करेंगे और एनर्जी के चैनल्स को ओपन करेंगे और ऑर्गन को हील करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑरा को ठीक करना है, तब आपको ऑरा को हील करने के लिए ऑरा को विजुअलाइज करना होगा, इन थॉट्स को ऑरा के पास लेकर चलना होगा। अगर आपको अपने माइंड के अंदर की जो थॉट्स हैं उन्हें ठीक करना है, तो फिर आपको अपनी कॉन्शियसनेस को माइंड के अंदर जाकर एनालिसिस करना होगा और मेंटल लेयर जो है थर्ड लेयर उसको हम क्लीन करेंगे। कल मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स वी आर 5 लेयर्स ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लेयर है वो फिजिकल बॉडी है। तो जब फिजिकल बॉडी में डिजीज है तो हम मेडिटेशन के दौरान अपनी थॉट्स को फिजिकल बॉडी में ले जाकर उसका क्लीनिंग करेंगे, उसको हील करेंगे। अगर एनर्जी लेवल पे ब्लॉकेज है सेकंड लेयर, तो उस लेयर में अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर जाएंगे और वन बाय वन वहां पर क्लीनिंग करेंगे। अगर आपके माइंड के लेवल पर प्रॉब्लम है मेंटल लेयर, तो हम माइंड के लेयर में एंटर करने के बाद उसे वन बाय वन क्लीन करेंगे कि कॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम है या सबकॉन्शियस की है, वहां पर जाकर वहां पर समझकर उस ब्लॉकेज को खत्म करेंगे। फोर्थ लेयर है आपकी इंटेलेक्ट, विवेक, बुद्धि। मेडिटेशन के दौरान आप अपनी फोर्थ लेयर को भी एक्सेस कर सकते हैं और उस लेयर में जाकर वहां पर जो विजडम है वो हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी खुद की विजडम, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे माइंड के पास नहीं होता, लेकिन हमारी इंटेलेक्ट को सब चीजें पता होती हैं। वहां से हम जब मैसेज डाउनलोड करेंगे तो हमें नई इंसाइट मिलेगी। कल भी मैंने बताया था 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सैड सिंड्रोम, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से माइंड हाइपर हो गया है, इसकी वजह से हमारी इंटेलेक्ट बहुत ही कमजोर हो गई है। मैंने आज सेशन के शुरुआत में ही बात किया कि हमारी इंटेलेक्ट बहुत वीक हो गई है, जिसकी वजह से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हैक करना बहुत आसान हो गया है, और इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड, आई कॉल देम स्मार्ट पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल जानते हैं कि लोगों के माइंड को कैसे हैक किया जाए, और ये लगातार हैकिंग पे लग रहे हैं। 24/7 इनका काम है लोगों की कॉन्शियसनेस को हैक करना, और इनका काम है लोगों का टाइम और मनी उनके पास से लेकर अपने पास लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड, जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं 30 सेकंड की या 1 मिनट की, कि आप देखते ही आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड हैक हो जाए और आप डिसीजन ले लें, इमोशनल डिसीजन, और बेवकूफ बन जाएं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का फियर चल रहा है, आपको दिखाया गया कि यस ये जो अभी नया ब्लेजर आया है रेमंड्स का, ये एंटीवायरल कोटिंग है, आप इसे ले लें। आप पहले से डरे हुए हैं, अब आपने सोचा कि अरे वाह ब्लेजर तो पहनना ही है, कितना अच्छा हो ये ब्लेजर पहन के चलूं और मेरे पास वायरस ही ना आए। ये क्या है? कॉन्शियसनेस का हैकिंग है। जिस जिस चीज का फियर आपको है उसी उसी चीज का फियर दिखा के आपको कॉन्शियसनेस को हैक कर ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट बहुत वीक हो गई है और सारे डिसीजंस आप माइंड के द्वारा ले रहे हैं। और देखिएगा आप जब आप अपनी इंटेलेक्ट के साथ जुड़ते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आती है, वो आपको सही डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम अपनी इंटेलेक्ट को चुप करा देते हैं, बोलते हैं नहीं शांत हो जा, और डिसीजन किस पे लेते हैं? कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। जबकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड 5 senses के द्वारा डिसीजन लेगा, जो उसे दिख रहा है, जो उसे सुन रहा है, उसी के आधार पर। सबकॉन्शियस माइंड अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने आपके दोस्त के बारे में बताया, एक आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और किसी पर्सन ने आपको बताया कि यार सुन गए हो कल तुम्हारे बारे में तुम्हारा दोस्त बहुत कुछ भला बुरा बोल रहा था, तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। अब ये क्या हुआ? आपके कॉन्शियस माइंड ने सुना और सुन के अब अंदर में फिर एक डिसीजन लेगा। अगर इतना सुनने के बाद आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं अब इससे आगे कोई वास्ता नहीं रखना है, इसके साथ फ्रेंडशिप ब्रेक, ये डिसीजन हुआ आपके कॉन्शियस माइंड का। कुछ लोग कॉन्शियस माइंड के द्वारा ये डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई अच्छी सी चीज दिखाई दी और आप विजुअल पर्सनैलिटी है और आपने इमीडिएट उसको ग्रैब करने के लिए परचेस कर लिया मोबाइल पर, यह हुआ कॉन्शियस माइंड डिसीजन। लेकिन कुछ लोग कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते, सब कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड ने कोई इंफॉर्मेशन दी, अब उसके बाद वो अंदर में सब कॉन्शियस में प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल था कि आपके किसी दोस्त के बारे में, आपके किसी दोस्त ने आपको पुराने दोस्त के बारे में बताया कि वो आपकी बुराई कर रहा था। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड से बात किया, सबकॉन्शियस माइंड ने बताया हां दो लोग पहले भी बोल चुके हैं, उसने एक बार तुम्हारे साथ ऐसा भी किया था। यानी पुराना एक्सपीरियंस, अब अगर पुराने एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जब उस दोस्त ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, तब सबकॉन्शियस माइंड आपको डिसीजन लेने पर बाध्य कर देगा कि हां अब तो उसके साथ फ्रेंडशिप ब्रेक कर दो। ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन। या जैसे कॉन्शियस माइंड ने कोई चीज देखा, सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि हां ये तो उस व्यक्ति ने भी लिया था, उसने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसका भी बहुत अच्छा सामान आया था, तुम भी ले लो। या तुमने जब लास्ट टाइम सब ऑनलाइन परचेस किया था, वो अच्छा ऑर्डर आया था, तो तुम इस चीज को भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। यह हो गया सबकॉन्शियस का डिसीजन। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के। कई बार आप देखते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिया गया डिसीजन गलत होता है। जब आपको पता चलता है कि आपका दोस्त के बारे में जो आपके अंदर भर दिया गया वो गलत था, क्योंकि ये परसेप्शन होता है सामने वाले का, और परसेप्शन कभी भी रियलिटी नहीं होता, परसेप्शन उसका रियलिटी होता है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसे वो होती है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम होते हैं। जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वही हमें दिखाई देता है, एक्चुअल नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो चीज आपके माइंड में चल रही होती है आप उसी से रिलेटेड बात करते हैं, और वही आपके आसपास घटित होना शुरू हो जाता है और वही चीजें आपको दिखाई देती हैं। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, अभी रिसेंट की बात है, लॉकडाउन के दौरान 2-3 महीने पहले की बात। मैं अपनी बिटिया के साथ कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए जा रहा था, तो मेरी बिटिया ने कहा पापा वो जो दशहरी आम होते हैं चूसने वाले, आज वो परचेस करके लेकर आएंगे। मैं बोला ठीक है बेटा, ढूंढते हैं, चलो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब उसके दिमाग में क्या फितूर चल रहा था, वो चूसने वाला आम। रास्ते में मैं जब गाड़ी से जा रहा था, वो फ्रंट सीट पे बैठी थी, वहां पर एक जगह लिखा हुआ था आम सूचना, आम सूचना। तो वो मुझे बोलती है कि पापा यहां पर आम चूसना क्यों लिखा हुआ है, आम चूसना। तो मैंने देखा और घुमा के पढ़ा, आम सूचना लिखा है। फिर मैंने उसे बताया कि बेटा वो तो आम सूचना है। उसने दोबारा पढ़ा, उसे आम सूचना ही दिखाई दिया, क्योंकि उस समय उसके माइंड में वो चूसने वाला आम चल रहा था, तो उसने बाहरी दुनिया को डिस्टॉर्ट करके आम चूसना बना दिया। ये तो बच्चा मन है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमें वही दिखाई देता है जो अंदर में चल रहा होता है। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा। और डिसीजन भी हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से ले लेते हैं, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, एक अंदर से आवाज आती है, वो इंटेलेक्ट की आवाज होती है, वो हमें सही और गलत के लिए गाइड करती है, राइट और रॉन्ग, और वो सही आवाज होती है। लेकिन सुपर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इतने हाइपर एक्टिव हो चुके हैं कि वो इंटेलेक्ट को दबा देते हैं, उसको डिसीजन नहीं लेने देते, और इस वजह से हमारे बहुत सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, फिर हमें पछताना पड़ता है, रिग्रेट करना पड़ता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तब इस दौरान आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, सुप्रा कॉन्शियस माइंड, और आप अपने फोर्थ लेयर इंटेलेक्ट के लेयर को एक्सेस कर पाते हैं, और यहां से आपको आपकी इंटेलेक्ट स्ट्रांग होना शुरू होती है, फिर आपके डिसीजन मेकिंग सही डायरेक्शन में जाना शुरू होते हैं। इस बात को तब आप फील कर पाएंगे जब आप रेगुलर मेडिटेट करेंगे। मैं मेडिटेशन के दौरान अपनी फोर्थ लेयर को जब एक्सेस करता हूं, लेयर बाय लेयर चलना शुरू करता हूं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और जब थर्ड लेयर के बियॉन्ड जाता हूं एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसे ऐसे विचार माइंड में आते हैं जो आज तक कभी नहीं आए, क्योंकि मैं अब अपने फोर्थ एनर्जी लेयर में चला गया हूं, और यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी इनबिल्ट इंटेलिजेंस है जो गॉड से मुझे मिली है, और यहां से मुझे ऐसे मैसेज डाउनलोड होते हैं जो मेरी समस्याओं के हल होते हैं। तो मेडिटेशन में अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो आपको फोर्थ लेयर को एक्सेस करना होगा, और फिर आप अगर अपनी सोल के साथ जुड़ के गॉड के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको फिफ्थ लेयर में जाना होगा, वो है सोल लेयर, ब्लिस लेयर। अगर आपने फिफ्थ लेयर को एक्सेस कर लिया तो आपकी बॉडी में अलग ही सेंसेशन आएगा, अलग ही मजा आएगा, अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा आनंद आपको किसी भी चीज में नहीं मिला होगा। ब्लिस, एक होता है खुशी और एक होता है ब्लिस, एक आनंद एक परमानंद। ब्लिस एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस ब्लिस को पाने के लिए योगी लोग बड़े बड़े योग करते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे। हमको लगता था कि उन्हें क्या मिलता है, उन्हें ब्लिस मिलता है। वो जब ऐसे बैठे होते थे ध्यान में 10-10 साल 5-5 साल, उन्हें अंदर से ब्लिस मिल रहा होता था। वो ब्लिस की फीलिंग ऐसी होती थी जो आज हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डिफाइन भी नहीं कर सकते। हाँ, इसे समझना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा। जो डेली मेडिटेटर हैं, जिन्होंने ब्लिस की फीलिंग को अनुभव किया है, वो मेरी बातों को समझ सकते हैं। मैं भी इस बात को पहले नहीं समझता था, लेकिन जब मैंने डीप मेडिटेशन के दौरान ब्लिस को अनुभव किया कई बार, वो फीलिंग जब आती है ना, फिर उसके बाद वो चली भी जाती है कुछ देर बाद, और जब मैं मेडिटेशन से उठता हूं तो बार बार ऐसा लगता है कि काश वही फीलिंग वापिस आ जाए, वही इमोशनल स्टेट वापिस आ जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होता वो स्टेट, क्योंकि आज हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम मेटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, लॉजिकल ज्यादा हो गए हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो गया है, लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा थिंक कर रहे हैं राइट ब्रेन से नहीं, पैरासिंपेथेटिक सिस्टम शट डाउन हो गया, सिंपेथेटिक मोड ज्यादा एक्टिवेट हो गया है, ईड़ा नाड़ी स्लो चल रही है, पिंगला ओवर एक्टिव चल रही है, सुषुम्ना में से तो करंट जा ही नहीं रहा है, ये चक्र ये लाइट डिम हो गई है, सारे डिसीजन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से हो रहे हैं, इंटेलेक्ट वीक हो गई है, ब्लिस लेयर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन है, आज भी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ये वैदिक साइंस। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना महात्मा बुद्ध, ये देखिए इनर ब्लिस, ये जो ब्लिस की फीलिंग में बैठे हुए हैं ये है ब्लिस। इसलिए तो इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। मेडिटेशन शायद महात्मा बुद्ध से ज्यादा किसी ने नहीं समझाया होगा, क्योंकि इन्होंने जो ब्लिस अनुभव किया, इन्होंने कहा किसी गॉड की जरूरत नहीं है, बस केवल उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। इसलिए महात्मा बुद्ध किसी गॉड को नहीं मानते थे, उन्होंने गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने आप को एक बताया कि आप अपनी सोल के साथ जुड़े। सोल मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, ये जो इनके माथे में दिखाई दे रही है लाइट की फॉर्म में, और गॉड मतलब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी। उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जब आप अपने लाइट के सोर्स को कनेक्ट करते हैं, एंटीने ओपन करते हैं, जैसे वाईफाई रूटर है, और आपने अपना पासवर्ड डाला, और फिर मैसेज डाउनलोड होने शुरू होंगे और एनर्जी का फ्लो आपको महसूस होगा। ये जैसे उनके चारों तरफ आपको ऊर्जा दिखाई दे रही है, आप मेडिटेशन में इसे डेली फील कर सकते हैं। ये आपका ऑरा है। इनके हाथों में जो चक्र होते हैं, हाथों के चक्रों से एनर्जी आपको दिखाई देती है, आप फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस को। ये है मेडिटेशन की साइंस, और इसे साइंटिफिक वे में पहले नॉलेज लेना है। नॉलेज लेने के बाद जब आप इसे प्रैक्टिकल वे में करेंगे तभी आप इसे फील कर पाएंगे। मेडिटेशन बताने से ज्यादा फील करने की चीज है, लेकिन फील करने के लिए पहले आपकी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी साइंस को समझने के लिए पहले नॉलेज लेना होता है, फिर उसको आर्टिस्टिक वे में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्होंने कई बार ब्लिस की फीलिंग को ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा। तो ये फाइव लेयर्स जो कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक साइंस में बताया गया था, आज क्वांटम फिजिक्स उस बात को साइंटिफिकली प्रूव कर रही है कि ये पांच लेयर हैं, और इन पांचों लेयर को एक्सेस किया जा सकता है। अभी तक हम केवल एक लेयर को एक्सेस कर रहे हैं, और उसके साथ भी हमारा कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इसलिए तो डिजीज आ रही है। और ये एनर्जी लेयर्स के बारे में तो मालूम ही नहीं है, चक्रों के बारे में तो मालूम ही नहीं है, माइंड से हम परेशान हैं, इंटेलेक्ट वीक हो गई है, और सोल के बारे में तो कभी कनेक्ट ही नहीं हुए। लेकिन ये पांचों चीजें, पांचों लेयर साइंटिफिकली बायोफील्ड्स हैं। एक एक लेयर को आप, एनर्जी के लेयर को एक्सप्लोर करें, जाएं इसके अंदर, और इसके अंदर जो एनर्जी है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको लें। लेकिन इसको लेने के लिए आपको पहले इस बाहरी दुनिया से कुछ देर कटना होगा। सारा दिन मोबाइल, सारा दिन यूट्यूब, वेब सीरीज, टीवी, मीडिया, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, कुछ देर हट जाइए, कुछ नहीं रखा, वो हैक कर रहे हैं आपको, सारा दिन हैक कर रहे हैं। जितना देर आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे उतनी नई इंफॉर्मेशन, नई एनर्जी आपको मिलेगी, और वो एक्चुअल एनर्जी और इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। बाहरी दुनिया में जुड़ के हम इंफॉर्मेशन गलत ले रहे हैं और एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अंदर की दुनिया में जुड़ के इंफॉर्मेशन नया मिलेगा, यूजफुल मिलेगा और एनर्जी का नया संचार होगा। एक पावर पॉइंट के साथ आपको जोड़ता हूं आगे के सेशन के लिए। ये हमारे शरीर में 12 मेरिडियंस होती हैं, 12 मेरिडियन यानी कि मेजर नाडीज। नाड़ियां वैदिक विज्ञान में बताया गया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरिडियंस कहा जाता है, और ये मेरिडियन, एक एक मेरिडियन एक एक फिंगर के साथ जुड़ी होती है, और ये डिफरेंट फिंगर्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम जब यूज करते हैं उसके द्वारा हम अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे पूरी शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर बिछी हुई है और कंट्रोलिंग सिस्टम इन हाथों में है। जैसे मान लीजिए हमने इस फिंगर को, इस अंगूठे को ये इस फिंगर के साथ जोड़ दिया, अब ये अग्नि मुद्रा बन गई। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो मुद्राएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारी हेल्थ के लिए, मेरिडियंस को ओपन करने के लिए। इसीलिए मेडिटेशन के दौरान मुद्रा करवाई जाती थी वैदिक साइंस में। हम आने वाले सेशंस में मुद्रा के विज्ञान को कंप्लीटली समझेंगे कि कौन सी मुद्रा के द्वारा कौन सी मेरिडियंस को एक्टिवेट किया जा सकता है, और कैसे हम इन मुद्रा के द्वारा मेडिटेशन के दौरान कौन सी मुद्रा हमें लगानी है ताकि हम अपनी उस मेरिडियन को एक्टिवेट कर सकें। इनफैक्ट साइकोनिरोबिक की जो साइंस है उसका एक मेजर पार्ट है मुद्रा विज्ञान, हैंड गेस्चर्स। मुद्रा के द्वारा हीलिंग कैसे होगा आने वाले सेशंस में हम इसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे ये मैं आपको मेरिडियंस दिखाया था, मेरिडियंस के बाद मैंने ये बायो वेल जिसके द्वारा हम मशीन के द्वारा चक्रों को देख सकते हैं, ऊर्जा को देख सकते हैं। साइकोनिरोबिक, साइकोनिरोबिक साइंस क्या है? जैसे आपने एरोबिक सुना, एरोबिक मतलब जब हम कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा लेकर जाते हैं तो उसे एरोबिक्स कहा जाता है। न्यूरोबिक और साइको, साइको मतलब माइंड, न्यूरोबिक्स मतलब नर्वस टिश्यू। साइकोनिरोबिक साइंस है अपने शरीर के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर बायो इलेक्ट्रिकल करंट, लाइफ फोर्स एनर्जी, वाइटल एनर्जी को एक्सेस में लेकर जाना और सेलुलर वोल्टेज को ठीक करना। लेकिन किसके द्वारा? माइंड के द्वारा। यानी कि साइकोनिरोबिक इज ए साइंस ऑफ ट्रांसफरिंग बायो इलेक्ट्रिकल करंट और स्पिरिचुअल एनर्जी टू द सेलुलर लेवल वाया नर्वस सिस्टम। कैसे किया जाएगा? इसमें तीन कंपोनेंट होंगे, न्यूरो मस्कुलर रेस्पिरेटरी एक्शंस। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, मस्कुलर मतलब मसल्स के द्वारा, और रेस्पिरेटरी एक्शंस के साथ। इसके बाद न्यूरो मस्कुलर रेस्पिरेटरी एक्शन के साथ साथ इसमें तीन चीजों का यूज होगा, वो है मुद्रा विज्ञान, मुद्रा विज्ञान के बाद साउंड, साउंड थेरेपी, वाइब्रेशंस, साउंड फ्रीक्वेंसीज, और थर्ड है विजुअलाइजेशन, कलर्स, जिसमें हम कलर्स विजुअलाइजेशन के दौरान अपने बॉडी के अंदर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करेंगे। और अच्छे से समझाता हूं कि देखिए, पुराने समय में, वैदिक समय में जो देवता थे या जो उस समय के ह्यूमन बीइंग्स थे वो कैसे हेल्दी रहते थे? वहां एक कॉन्सेप्ट था रास, रंग और नाद का। रास मतलब एक पर्टिकुलर रिदमिक डांस, जो आपने देखा जैसे महाभारत में कृष्ण का दिखाया गया है, ये जो डांस होता था उस समय, इस डांस को करते हुए वो लाइफ फोर्स एनर्जी को अपनी बॉडी में लेकर जाते थे। ये डांस नहीं था, ये मेडिटेशन था, मेडिटेशन था ये, क्योंकि इस समय ये लोग मुद्रा लगाते थे। जब हाथों का एक पर्टिकुलर पोस्चर बनाया जाता था, पर्टिकुलर मूवमेंट्स दिए जाते थे। इसी का धीरे धीरे कन्वर्जन हुआ जो आज हमारे क्लासिकल डांस हैं, उसके अंदर भी मुद्रा लगाई जाती है, उनके अंदर भी एक रिदम होता है। लेकिन आज जो डांस हो गया है वेस्टर्न डांस, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका है, क्योंकि ये जो डांस था रास, इसके अंदर में एनर्जी ट्रांसफर होता था, जितना भी देर ये डांस कर ले उतना देर इनकी बॉडी में एनर्जी और इंक्रीज हो जाती थी। और आज जब हम डांस करते हैं तो एक घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, टोटली थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम जो डांस कर रहे हैं वो केवल फिजिकल बॉडी के लेवल पर है, माइंड और एनर्जी के लेवल पर नहीं। और इन समय का जो डांस था रास, जिसे हम रास कहते थे, वो अपने आप में एक मेडिटेशन था, जब ये पर्टिकुलर मुद्रा के साथ, पर्टिकुलर रिदम के साथ, पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ और पर्टिकुलर रंग के साथ, रंग मतलब ये लोग जेम पहनते थे। और उस समय का जो म्यूजिक होता था वो नाद कहा जाता था, नाद, नाद मतलब वो साउंड फ्रीक्वेंसी होती थी। हमें क्या लगता है कि वो सब ऐसे ही चलता था? ये जो पर्टिकुलर वैदिक साइंस के समय देवता लोगों का जो ये साइंस था, रास रंग और नाद, यानी वो एक पर्टिकुलर रिदम में, पर्टिकुलर मुद्रा में, पर्टिकुलर कलर्स पहनकर और पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ डांस करते थे, तो उनके जो एनर्जी बॉडी होती थी वो एक्टिवेट हो जाती थी। सातों कलर, सातों चक्र, 72,000 नाड़ियां मेडिटेशन में होते थे उस समय, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा होता था। इसी साइंस को डॉक्टर बी के चंद्रशेखर सर ने आज इस फॉर्म में लाया है। इसके अंदर में ये तीनों कलर चीजों को चेंज किया गया है। पहला है रास, रास को आज मुद्रा विज्ञान के द्वारा सीखा जाएगा, क्योंकि वैदिक समय में ये सारी चीजें चेंज की गई, बताया गया कि देवताओं के द्वारा जो चीजें थी उन्हें हम मॉडर्न सिस्टम में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। जब मुद्रा आप लगाएंगे तो उस मुद्रा के दौरान आपकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर मेरिडियन एक्टिवेट होगा और एनर्जी का फ्लो होगा। दूसरा है कलर, अब कलर कैसे लेकर आएंगे, उन्हें हम अपने माइंड के द्वारा विजुअलाइज करेंगे। जब हम कलर विजुअलाइज करेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा माइंड और ब्रेन की जो सेल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगी, और उस वाइब्रेशन को हम एक एक सेल में लेके जाएंगे तो वो सेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सेल की वोल्टेज बढ़ेगी। तीसरा पार्ट है साउंड फ्रीक्वेंसी, नाद, मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा और फ्रीक्वेंसी साउंड्स के द्वारा, बाइन्यूरल बीट्स के द्वारा, साउंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक हुआ साउंड फ्रीक्वेंसी और एक हुआ विजुअलाइजेशन, विजुअल फ्रीक्वेंसी। जब आप पर्टिकुलर कलर को बहुत देर तक देखते हैं तब आपकी ब्रेन की सेल उस पर्टिकुलर कलर की फ्रीक्वेंसी से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि आईज ने वो सेंसेशन, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी को सेंड कर दिया। मुद्रा जब लगाएंगे तो पर्टिकुलर मेरिडियन के अंदर करंट एक्टिवेट होगा, और वही फ्रीक्वेंसी अगर आपको साउंड के द्वारा भी दिया जाए तो आप पर्टिकुलर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, ब्रीफ में यह है कि मुद्रा, कलर विजुअलाइजेशन और साउंड फ्रीक्वेंसी के कॉम्बो है साइकोनिरोबिक। डॉक्टर बी के चंद्रशेखर सर ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि आप घर बैठे कहीं पर भी ये तीनों चीजों को यूज करते हुए, साउंड फ्रीक्वेंसी, विजुअल फ्रीक्वेंसी और मुद्रा विज्ञान, इन तीनों को यूज करते हुए अपनी एनर्जी बॉडी के ब्लॉकेज को ओपन कर सकें और अपने जो चक्र हैं उनको आप एक्टिवेट कर सकें। तो यहां पर साइकोनिरोबिक साइंस कल से जो शुरू हो रहा है, आज तक उसका इंट्रो पार्ट था, बेसिक थ्योरी पार्ट था, कल से हम इसे प्रैक्टिकल वे में शुरू करेंगे। तीन कंपोनेंट होंगे, एक है निरोबिक स्पा, ये जो इनर बॉडी है, एनर्जी बॉडी, इसे कैसे प्रॉपरली क्लीन करना है। जैसे हम फिजिकल बॉडी को स्नान लेकर, बाथ लेकर पानी के द्वारा क्लीन करते हैं, सेम टू सेम हम सेकेंड बॉडी, एनर्जी बॉडी को क्लीन करेंगे निरोबिक स्पा के द्वारा। क्या है ये निरोबिक स्पा, कल हम जानेंगे। दूसरा पार्ट है एक एक चक्र, एक एक चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए साउंड फ्रीक्वेंसी और मुद्रा विज्ञान के साथ हम उन्हें एक्टिवेट करेंगे। तीसरा पार्ट है निरोबिक एक्सरसाइजेस, स्पेशली डिजाइन एडवांस प्राणायाम, न्यूरो मस्कुलो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मुद्रा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अपनी बॉडी में एक्टिवेट करेंगे। और एक पार्ट है 3D इमेज विजुअलाइजेशन, जिसके द्वारा आप स्टीरियोग्राफिक इमेज के द्वारा अपने माइंड की सेल्स को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके उन चक्रों के अंदर उसे ट्रांसमिट करेंगे। यानी कि आज ध्यान के लिए आपको पेड़ों के नीचे जाने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, जहां पर आप हैं वहीं पर बैठकर भी ध्यान में जा सकते हैं। बिगनिंग के लिए ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है। एक बार आप मेडिटेशन सीख गए और आपने इन चक्रों को एक्टिवेट करना शुरू किया, आपने फील किया ब्लिस को, आपने फील किया एनर्जी बॉडी को, फिर मैं आपको आगे के लेवल पर लेकर चलूंगा। लेकिन मेडिटेशन का पहला स्टेप है इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करना, एनर्जी चैनल्स को ओपन करना, चक्रास को बैलेंस करना। फिर इसका अगला पार्ट होगा पांचों लेयर को एक्सेस करना। फिर अगला पार्ट होगा ब्लिस फील करना और इनर हीलिंग लेकर आना। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जो लोग पहले से इस कोर्स को कर चुके हैं, इस बार उन्हें कुछ और आनंद आएगा। एक्चुअल फीलिंग उन्हें यहां पर हो सकती है अगर वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी डिवोशन के साथ इस चीजों को यहां पर करेंगे। कल से प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो रही हैं। थोड़ा और जानकारी आगे चलते हैं। क्या सीखेंगे हम? इस मुद्रा विज्ञान को सीखेंगे, ये निरोबिक स्पा को सीखेंगे, अलग अलग कलर से कैसे अलग अलग चक्र को एक्टिवेट करना है ये सीखेंगे, निरोबिक एक्सरसाइजेस, एम्पावरिंग निरोबिक, प्यूरिफाइंग निरोबिक्स। जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पीसफुल निरोबिक, ब्लिसफुल निरोबिक, ये सारी चीजें हम वन बाय वन सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे फूड, एयर और वाटर चार्जिंग। क्या हम फूड को, वाटर को, एयर को चार्ज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे होगा डे टू डे लाइफ में, साइंटिफिक वे में। तो इस जर्नी पर चलने के लिए कल से तैयार हो जाएं। कल से हमें करना क्या है? कल से हम सात चक्र को वन बाय वन समझेंगे। कल से ड्रेस कोड सिस्टम रहेगा। कल हमारा पहला चक्र रहेगा रूट चक्र, एम्पावरिंग डॉक्टर। जिनको ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये डॉक्टर लेकर आएगा, एम्पावरिंग डॉक्टर, उनकी समस्याओं का निदान। जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, इनसिक्योर फील होता है, फियर ज्यादा महसूस होता है, उनके लिए ये हेल्प करेगा। हमारे बॉडी में सात डॉक्टर्स हैं, इनर डॉक्टर्स। ये वन बाय वन आप समझेंगे। तीन डॉक्टर्स विजिबल डॉक्टर लाइक मी, इनविजिबल डॉक्टर आपके साथ चक्र, सुप्रीम डॉक्टर गॉड भगवान। तीनों डॉक्टर का इंटीग्रेशन है साइकोनिरोबिक। तीनों की मदद लेनी होगी, हमें तीनों की मदद लेनी होगी। अभी क्या हो रहा है कि जो हीलिंग साइंसेस में है, मान लीजिए कोई आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है या कोई नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट है या कोई होम्योपैथी स्पेशलिस्ट है, वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि मेरी पैथी सबसे अच्छी पैथी है, आप इसे लें और ठीक हो जाएं। मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। किसी भी एक पैथी से आप ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि डिजीज का जो कारण है वो मल्टीफैक्टोरियल है। वो फिजिकल लेवल पर भी है, मेटाफिजिकल लेवल पर भी है। तो जब तक आप अपनी डिजीज का एक कंप्लीट एनालिसिस नहीं करते, ये नहीं समझते उसके कारण क्या क्या है, तो निदान कैसे होगा? पैथीज, जितने भी पैथीज हैं, सारी पैथीज को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन के बाद हमें यह समझना होगा कि माइंड जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, इमोशन जब तक ठीक नहीं करेंगे, फिजिकल बॉडी पे एलोपैथी ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, नेचुरोपैथी ले लीजिए, आयुर्वेदापैथी ले लीजिए, ठीक नहीं होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हां, अगर आपने फिजिकल बॉडी पे पैथीज को लिया और माइंड के लेवल पर आपने इमोशनल वेलनेस को लाया और एनर्जी के लेवल पर बैलेंस कर लिया, तो आप किसी भी डिजीज को हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज आप केवल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट लें, चाहे आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीटमेंट लें, और चाहे नेचुरोपैथी के थ्रू या होम्योपैथी के थ्रू, लेकिन आपको ट्रीटमेंट से ऊपर जाना है तो आपको ये इनविजिबल डॉक्टर्स को समझना होगा। ट्रीटमेंट मतलब विजिबल डॉक्टर। एलोपैथी के पास जा रहे हैं तो मेरे डॉक्टर के पास, मेरे पास आएंगे। आयुर्वेद नेचुरोपैथी के पास जाना है तो डॉक्टर राहुल है, डॉक्टर संस्कृति है, आ जाइए पॉजिटिव हेल्थ जोन में, वो अपनी पैथीज के द्वारा देंगे, बहुत अच्छी पैथीज है। लेकिन अगर उसके साथ आपको ये हीलिंग करनी है तो फिर आपको ये इनर डॉक्टर्स के पास आना होगा, और ये इनर डॉक्टर की साइंस है साइकोनिरोबिक की साइंस। ट्रीटमेंट विजिबल डॉक्टर, इनविजिबल डॉक्टर, हीलिंग, सात डॉक्टर आपके अंदर हैं। आपके अंदर एक हॉस्पिटल है, आपके अंदर एक फार्मेसी है, सारी मेडिसिन वहीं से स्क्रीट होती हैं, लेकिन आपने उस हॉस्पिटल पे ताला लगा दिया है, उस फार्मेसी को बंद कर दिया है हरी वरी और करी से। सारी मेडिसिन आप ही के अंदर बनती है, आपके अंदर 7 डॉक्टर हैं, लेकिन कभी आपने उनसे कंसल्टेशन नहीं लिया, आप बाहरी डॉक्टरों के पास ही केवल कंसल्टेशन लेने जाते हैं। जब आप अपने बाहरी डॉक्टर के साथ साथ इनर डॉक्टर के साथ मिलेंगे, सारी चीजें हील हो जाएंगी। हील मतलब वो बिना दवाइयों के आप ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होंगे। जितनी डिजीजेज हैं वो धीरे धीरे करके रिवर्स करनी होंगी, क्योंकि पैदा भी आपने लंबे समय में की है। और क्योर का मतलब है परमानेंट, कि दोबारा कभी नहीं होंगी, उसके लिए आपको मदद लेना होगा सुप्रीम डॉक्टर का। ही इज द बेस्ट डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर, गॉड, डिवाइन एनर्जी। उसके साथ हमारा कनेक्शन वीक हो गया है, जब उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे, एनर्जी टैप करेंगे, सातों एनर्जी को बैलेंस करेंगे, फिजिकल बॉडी के लेवल पर लेकर आएंगे, ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर तीनों होगा। ये है ये साइंस, साइको न्यूरोबिक के साइंस। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, हीलिंग साइंसेस को मेडिकल साइंस के साथ और अदर साइंस के साथ जोड़ने की जरूरत है। अभी हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ, आयुर्वेद होम्योपैथी के साथ, सब डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं। फिर कुछ हीलर्स हैं जो बोलते हैं हम ही ठीक कर देंगे, और वो बोलते हैं कि मेडिकल साइंस अच्छी नहीं है, आयुर्वेदिक साइंस अच्छी नहीं है, होम्योपैथी साइंस अच्छी नहीं है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, जब तक हम माइंड के लेवल पर ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई डिजीज हील नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारियां हमने माइंड के लेवल पर पैदा की हैं और एनर्जी के लेवल पर। मैं इन्हीं दो चीजों पर काम कर रहा हूं, एक माइंड का लेवल ठीक करने का और एक एनर्जी का लेवल ठीक करने का। पहला स्टेप यही है, जब तक आप इन्हें ठीक नहीं करेंगे कोई डिजीज हील नहीं हो सकती, वापिस रिकरेंस हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया ठीक हो जाएगा, फिर वापिस आ जाएंगी। परमानेंट क्योर चाहिए तो फिर आपको तीनों की मदद लेनी होगी। कल से हम शुरू करेंगे इस अमेजिंग साइंस के साथ, साइको न्यूरोबिक की साइंस, हीलिंग की साइंस, ट्रीटमेंट की साइंस, क्योर की साइंस। आज के सेशन को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं।